दिन भर तारीख 17 सितंबर दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। चिली के तटीय इलाकों में कल रात आए जबरदस्त भूकंप के कारण 10 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, 8 लोगों की मौत।
Pero no era una ola, fue como una marea alta.
राजस्थान में आईपीएस अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, कहा सरकार दंगा रोकने के लिए प्रताड़ित कर रही है। भारत पाकिस्तान युद्ध की सीरीज में सुनिए जाबाज अदी तारापोर की बहादुरी का किस्सा।
मेरे पिताजी वाज अ वेरी लॉयल पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत अपने सिर पर लेते थे, तो उनको लगा कि अगर वो छोड़ के चले जाए तो इनके सोल्जर्स और उनके ऑफिसर्स उनको कौन देगा।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। केंद्रीय चिली में एक जबरदस्त भूकंप आने के बाद बचाव कार्य तेजी से जारी है। मेडिकल समूह भी वहां भेजे गए हैं। करीब 10 लाख लोगों को वहां से हटा दिया गया है। इसमें कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। रिक्टर स्टेल पर भूकंप की तीव्रता 8.3 मापी गई। इस भूकंप से सुनामी का खतरा भी बढ़ गया है। बाढ़ का पानी तटीय इलाकों में घुस आया है। पड़ोसी देश अर्जेंटीना और दक्षिणी ब्राजील में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का कहना है कि निचले स्तर की 368 सरकारी नौकरियों के लिए 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया है। इसका मतलब है कि हर नौकरी के लिए 6000 लोग कतार में हैं। इनमें से कई आवेदनकर्ता स्नातक हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का कहना है कि अगर 2000 लोगों का रोज इंटरव्यू किया जाए तो सभी आवेदनकर्ताओं का इंटरव्यू करने में 4 साल लगेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको ने देश की सुरक्षा परिषद से कहा है कि वह प्रतिबंधित लोगों की सूची में से बीबीसी के 3 पत्रकारों का नाम हटा दें। ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक संदेश में राष्ट्रपति पोरोशेंको के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रेस की आज़ादी राष्ट्रपति के लिए बहुत अहम है। 400 लोगों की इस ब्लैक लिस्ट में बीबीसी के इन 3 पत्रकारों के साथ रूसी सरकार के अधिकारी और अलगाववादी नेताओं का नाम भी शामिल है। बीबीसी ने इन पत्रकारों का नाम इस सूची में शामिल करने की निंदा की थी। पश्चिम अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट हुआ है। राष्ट्रपति के एक गार्ड ने टीवी पर घोषणा की कि सेना ने एक पथभ्रष्ट और अस्थाई सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। सेना के सदस्य गिलबर्ट डिएंडर को अस्थाई रूप से देश का नेता घोषित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने इस सैन्य तख्तापलट की निंदा की है। फ्रांस के रेडियो से उन्होंने बुर्किना फासो की सेना से अपील की कि राष्ट्रपति और अन्य बंधकों को छोड़ दिया जाए। मैं इस सैन्य तख्तापलट की पुरजोर निंदा करता हूं। यहां चुनाव की प्रक्रिया जारी थी, चुनाव की तिथियां भी तय कर दी गई थीं। इसलिए ये समझ से बाहर की बात है कि कुछ संगठन इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रुकावट डालें। जिन लोगों ने भी ये काम किया है, मैं उनसे अपील करता हूं कि वे बंधकों को छोड़ दें, खासतौर पर अंतरिम राष्ट्रपति को, और ये कार्रवाई तुरंत खत्म करें। ये थे फ्रांसवा ओलांद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी MI5 के प्रमुख एंड्रू पार्कर ने चेतावनी दी है कि बदलती तकनीक के साथ साथ चरमपंथी गतिविधियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि चरमपंथी नए हमलों की साजिश रचने और अधिकारियों की पकड़ से बाहर रहने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में 6 ऐसी कोशिशों को नाकाम किया गया। MI के प्रमुख ने ब्रिटेन में निगरानी बढ़ाने के लिए नए कानून लाने की योजना का भी समर्थन किया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। चिली के तटीय इलाकों से कल रात आए जबरदस्त भूकंप के कारण 10 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। 8.3 तीव्रता वाले भूकंप की वजह से करीब 4.5 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें भी उठी, जिससे तटीय इलाकों में पानी भर गया। चिली के गृहमंत्री जॉर्ग बोगार्स ने बताया कि आपदा को लेकर चिली की सरकार की तैयारी बेहतर थी, इसलिए मरने वालों की तादाद कम रही। उन्होंने 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। ब्यौरा सुनिए हरिता कांडपाल से।
चिली में बुधवार रात आए जबरदस्त भूकंप और सुनामी के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। प्रभावित इलाकों में बचाव और मेडिकल टीमें भेज दी गई हैं। प्रशासन ने तटीय इलाकों से लोगों को हटाकर ऊंचे इलाकों में भेजा था। बुधवार रात को कई शहरों में भूकंप के शक्तिशाली झटकों के बाद घबराए हजारों लोग सड़कों पर आ गए थे। तटीय शहर क्विंटे में भूकंप का जबरदस्त असर देखा गया है। यहाँ पहुंचे चिली के एक कैमरामैन रोबर्टो कॉन्ट्रास ने बताया,
As we're getting off the airplane and onto boarding the bus, suddenly I see the bus shaking completely.
जैसे ही हम विमान से उतरकर बस में चढ़ने लगे तो देखा कि बस हिलने लगी थी। जैसे ही मैंने मुड़ के विमान की तरफ देखा तो लगा जैसे सब कागज का बना है और हिल रहा है। हमें लगा कि हम खड़े भी नहीं रह पाएंगे। ये काफी जबरदस्त भूकंप था।
ये थे रोबर्टो कॉन्ट्रास के शब्द। भूकंप के बाद भी कई शक्तिशाली आफ्टरशॉक्स महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 तक मापी गई। प्रशासन ने तुरंत ही चिली के पूरे तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। लेकिन टीवी में दिखाई गई तस्वीरों से पता चलता है कि कोकिम्बो और वालपराइजो के शहरी इलाकों में सुनामी की लहरों के उठने के बाद पानी भर गया है। कोकिम्बो शहर में बिजली तक नहीं है और लोग परेशान हैं। एक तटीय शहर विनिया डेलमार में भी सड़कें पानी से लबालब हो गईं, जिससे बचकर निकले एक नागरिक अल्फांसो ने बताया,
Pero no era una ola, fue como una marea alta.
Marea alta, con fuerza.
Con fuerza. Y miro para atrás.
ये एक सामान्य लहर नहीं थी, बल्कि एक उच्च ज्वार की तरह मजबूत थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि पानी के साथ साथ एक या दो गैस टैंक भी बहे चले आ रहे थे। मैंने अपने कुत्ते को उठाया और भागा।
ये थे अल्फांसो के शब्द। चिली के राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट भूकंप से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। टीवी पर एक संदेश में मिशेल बाचेलेट ने कहा कि जिन्हें निकाला गया है उन्हें ऊंचे स्थानों पर ही रहने की हिदायत दी जाती है।
Las medidas tomadas fueron tomadas de manera muy rápida, apenas,
हमने तुरंत कदम उठाए। जैसे ही जबरदस्त भूकंप आया, हमारी पहली प्राथमिकता थी लोगों की सुरक्षा और तटीय इलाकों को खाली कराना। भूकंप के बाद सुनामी भी आया। हम बचाव कार्य से संतुष्ट हैं। जिन लोगों को हटाया गया है उन्हें दिक्कतें आएंगी, लेकिन उनकी जान बचाना महत्वपूर्ण था।
ये थे मिशेल बाचेलेट के शब्द। चिली में आया भूकंप इतना जबरदस्त था कि इसके झटके पड़ोसी देश अर्जेंटीना में भी महसूस किए गए, जहां राजधानी ब्यूनस आयर्स में कई इमारतों को खाली कराया गया। वहीं महाद्वीप के दूसरे छोर पर स्थित ब्राजील में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुनामी की चेतावनी अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया से लेकर न्यूजीलैंड तक में जारी कर दी गई है।
तो ये था चिली का हाल, रुख भारत का। राजस्थान में पुलिस सेवा के अधिकारी पंकज चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। उनका आरोप है कि उन्हें पिछले साल बूंदी कस्बे में एक प्रायोजित दंगा रोकने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। सोमवार को राजस्थान सरकार ने चौधरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया का कहना है कि उन्हें पुलिस अधिकारी का आधिकारिक बयान नहीं मिला है। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
राज्य की बीजेपी सरकार और पुलिस अधिकारी चौधरी में तब ठन गई जब सरकार ने इस पुलिस अधिकारी को चार्जशीट थमा दी। सरकार ने श्री चौधरी पर सांप्रदायिक तनाव की घटना में देरी से पहुंचने का आरोप लगाया है। इस पर श्री चौधरी कहते हैं, उनकी कार्रवाई से एक प्रायोजित दंगा होने से बच गया। यह घटना कोई एक साल पुरानी है। तब श्री चौधरी बूंदी जिले में पुलिस कप्तान थे। वहां सांप्रदायिक खून खराबे को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा था। श्री चौधरी ने बीबीसी से कहा, उन्हें एक प्रायोजित दंगा विफल करने पर अब प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार ने श्री चौधरी को हाथों हाथ बूंदी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वे सरकारी कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं, दंगे होते नहीं, करवाए जाते हैं। श्री चौधरी ने कहा कि वे ऐसे कार्यों में शामिल चेहरों को बेनकाब करेंगे, फिर चाहे अधिकारी हो या राजनेता। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने मीडिया से कहा, उन्हें अभी तक पुलिस अधिकारी का कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं मिला है, लिहाजा वे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इससे पहले कांग्रेस सरकार के दौरान भी श्री चौधरी और सीमावर्ती जैसलमेर जिले में राजनेताओं से उनका विवाद हो गया था। श्री चौधरी कहते हैं, वे संविधान के प्रति वफादार हैं, इसलिए किसी से डरेंगे नहीं। श्री चौधरी बूंदी की घटना में कथित रूप से कुछ धार्मिक संगठनों की ओर इशारा करते हैं। भारत में सियासत और पुलिस के बीच गठजोड़ की बातें होती रही है, लेकिन यह एक ऐसा विवाद उभरा है जहां दोनों पक्ष आमने सामने है। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
बीबीसी इंडिया बोल।
लखनऊ में सचिवालय चपरासियों के कुल 368 पदों के लिए करीब 23 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किए। आवेदन करने वालों में पीएचडी से लेकर बीटेक डिग्री वाले भी शामिल हैं। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए लगातार युवाओं को नौकरियां देने के वायदे करती रही हैं, लेकिन नौकरियों की कमी बरकरार है। लाखों करोड़ों नौकरियां पैदा करने के वायदे करने वाली पार्टियां आखिर क्या कर रही हैं? 19 सितंबर के इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। इस बार भी इंडिया बोल 7:30 बजे नहीं बल्कि 9:30 बजे घटना चक्र के वक्त होगा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त टेलीफोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
कथित बलात्कार के मामले में सऊदी अरब के राजनयिक ने कल रात भारत छोड़ दिया। राजनयिक पर दो नेपाली महिलाओं को अगवा करने और दिल्ली से सटे गुड़गांव में उनके साथ बलात्कार करने का आरोप था। ये मामला काफी गर्म था क्योंकि इस घटना में 3 देश शामिल थे। युवतियां नेपाल की हैं और जिन पर आरोप है वो सऊदी अरब के हैं। घटना भारत की है। कथित बलात्कार का ये मामला एक एनजीओ के जरिए पुलिस तक पहुंचा था। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की भारत में नेपाल के राजदूत दीप उपाध्याय से और पूछा कि नेपाली महिलाओं से कथित बलात्कार के अभियुक्त को सऊदी अरब कल रात रवाना कर दिया गया, ऐसा कैसे हुआ?
देखिए, इसमें कुछ ऐसे वियना कन्वेंशन का डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का भी बात है। जैसे ऐसा अपराध है कि जैसे मान लीजिए बहुत ही मानवता के लिए भी कलंक जैसा अपराध है, ये भी इतना सीरियस है, इस नाते विक्टिम को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय दिलाने के लिए हमें अब आशा है कि सऊदी सरकार, भारत सरकार, नेपाल सरकार, हम लोग सब इसमें लग के मिलकर डिप्लोमेटिकली भी पर्स्यू करना होगा। और जैसे भारत का घटना है, यहाँ का कोर्ट, यहाँ का कानून भी इसमें जैसे अपना इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा है।
दीप उपाध्याय जी, ये बताइए कि क्या आप लोगों का प्रेशर नहीं था कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो सऊदी डिप्लोमेट थे इनको बाहर जाने दिया, और अब जब ये चले गए हैं तो फिर इनको कैसे ला पाएंगे?
वियना कन्वेंशन का जो इम्यूनिटी है इसको थोड़ा सा रिव्यू, इस केस के नाते भी सीरियसली इसको भी रिव्यू करना है कि किस किस केस में मतलब इम्यूनिटी हो, किस में न हो। कोई मतलब यानी आतंकवादी गतिविधि में लगे, कोई जैसे हथियार में लगे, कोई जैसे इस किस्म का जैसे अमानवीय काम करे, इसमें इम्यूनिटी करना होना अपराध और अपराधी प्रमाणित है, उसको किस तरह से व्यवहार किया जाए, ये थोड़ा सा रिविजिट का विषय है। तत्काल के लिए थोड़ा सा ये डिप्लोमेट होने के नाते से अब तुरंत उनको जैसे पकड़ना, धकड़ना, कानूनी दायरे में लाना तो दिक्कत की बात थी।
आप इंडिया में एम्बेसडर हैं नेपाल के, आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि जो हुआ?
नहीं, ऐसा है ना, देखिए नेपाली महिला इसमें पीड़ित हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में खैर हम लोग
न्याय कैसे मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट
जो भी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसमें जैसे यानी अपना प्रॉपर जैसे मेडिकल बोर्ड से जांच वगैरह कराया और जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसमें हम जैसे उनको सहयोग कर रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आगे और जैसे आने के बाद में जो पिक्चर बनेगा तो उसके आधार से सऊदी कानून से सऊदी में कार्रवाई हो या इसे वेव करके यहाँ जैसे भारत के कानून की यहाँ सजा है, बात ही है, अपराध और अपराधी हैं तो सजा तो मिलना चाहिए। देखिए
दीप उपाध्याय जी, वो तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब एक जो अभियुक्त है जिस घर वो खुद चला गया तो फिर तो जस्टिस कैसे मिलेगा?
देखिए जैसे हम यहाँ के एमईए से संपर्क में है कि जैसे उनके बारे में जो अभियोजन है, जो भी रिपोर्ट है, रिसर्च है, उसको जैसे थोड़ा सा हम भी यानी मांग रहे हैं, उसे देखने के बाद में फिर क्या करना होगा थोड़ा सा लाश करेंगे। इस सबका पूरा सहयोग है कि इस किस्म का जैसे मानवता के लिए ही कलंक जैसा घटना नहीं होना चाहिए, जो जितना ऊंचा होता है बड़ा होता और नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रमाणित है तो गलत है करके चारों तरफ से है, तो इस नाते सऊदी सरकार से भी हमारा अच्छा तालुकात है, इसमें डिप्लोमेटिकली हम भी जैसे प्रयास करेंगे, भारत सरकार भी प्रयास कर रहा है।
अब आप नेपाल गवर्नमेंट की ओर से क्या करेंगे
इस केस में? दोनों तरफ, नेपाल में भी कार्रवाई हो रही है, भारत से भी कार्रवाई हो रही है। घटना यहाँ हुआ था, इसमें यहाँ की कोर्ट में हो रहा है, उसमें जो जो नेपाल के लोग इन्वॉल्व हैं वहाँ भी कार्रवाई हो रहा है। इसमें थोड़ा सा जैसे यानी इसको हम लोग को धैर्य करना होगा कि जल्दी पिक्चर क्लियर हो जाए, उसके बाद ही फिर एक अपना कॉमन स्ट्रेटेजी बनाएंगे।
ये थे भारत में नेपाल के राजदूत दीप उपाध्याय। और अब वक्त है 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानी। 1965 के युद्ध में चविंडा की लड़ाई में पाकिस्तान के कई टैंक तबाह करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल अदी तारापुरा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। वो लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने युद्ध भूमि को छोड़ने से इनकार कर दिया था। 1965 युद्ध की 17वीं कड़ी में रेहान फजल बता रहे हैं अदी तारापुर की बहादुरी के बारे में।
फिर फिलोरा जीतने के बाद सियालकोट की तरफ बढ़ते हुए जैसे ही पूना हॉर्स के टैंकों ने सीमा पार की, कमांडिंग ऑफिसर अदि तारापोर ने अपने नंबर दो मेजर निरंजन सिंह चीमा को कोने में बुलाया। उस लड़ाई में उनके साथ लड़ने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह याद करते हैं।
हमारे सबसे सीनियर मोस्ट स्क्वाड्रन कमांडर थे जनरल चीमा। जनरल चीमा भी पूना के रहने वाले हैं, तो ये भी पूना के रहने वाले हैं, तो इनके आपस में काफ़ी दोस्ती थी। वो सीनियर भी थे, तो एक एज ग्रुप के थे वो। तो इन्होंने जनरल चीमा से कहा था कि देखो, हो सकता है कि लड़ाई में कोई मर भी सकता है, अगर किसी वजह से मेरी कैजुअलिटी हो जाती है, ये लड़ाई के बारे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो नंबर वन तो मेरा क्रिमेशन करना, नंबर टू मेरे एक ही लड़का है जेरेक्सिस, उसको कहना फौज ज्वाइन करेगा और पुनः ज्वाइन करेगा। बड़े पूजा पाठ वाले आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रेयर बुक और मेरी अंगूठी मेरी वाइफ परीन को देना, और मेरा ये फेवरेट फाउंटेन पेन है ना, मेरी डॉटर जरीन को देना। ये पहले ही ये बता गए थे। मैं गया जब वहाँ, जा डेड बॉडी देखी तो यू नो कैसा फील होता है आपको, वो उनकी डेड बॉडी और उनके साथ जो आईओ था जसबीर, उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई टैंक के ऊपर। जनरल चीमा ने मेरे से कहा कि भाई अजय, इसको तो क्रिमेट करना है। मैंने कहा अगर क्रिमेट होगा तो यहीं होगा। दुनिया ने कहा क्रिमेशन करोगे तो यहाँ आग लगेगी, तो ऊपर से फायरिंग आएगा। मैंने कहा नेवर माइंड, अगर इन्होंने कहा क्रिमेशन यहाँ होगा तो यहीं होगा। और हमारे एक जेसीओ होते प्यारे लाल साहब, जाट जेसीओ, उन्होंने सब कुछ बंदोबस्त किया क्रिमेशन का। क्रिमेशन किया, फायरिंग आई, प्यारे लाल साहब मारे गए, पर क्रिमेशन हुआ।
5 दिन बाद लेफ्टिनेंट कर्नल अदि तारापोर पाकिस्तानी टैंक के गोले का शिकार हो गए। इससे पहले भी उनकी बांह में टैंक के गोले का एक शार्पनल आकर लगा था, जिससे उसमें गहरा घाव हो गया था। उन्होंने इलाज के लिए वापस जाने से इनकार कर दिया था और अपनी बांह में स्लिंग लगाकर लड़ते रहे थे। तारापोर की बेटी जरीन बॉयस ने बीबीसी को बताया,
चिवंडा में जब उनको हाथ में शनाकल्स लगे थे, मेरे पिताजी वाज अ वेरी लॉयल पर्सन और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत अपने सिर पर लेते थे, तो उनको लगा कि अगर जो वो छोड़ के चले जाए, इनके सोल्जर्स और उनके ऑफिसर्स जो उनके बच्चे जैसे थे, उनको कौन देखेगा। ऐसे तो थे जनरल चीमा, सब थे, पर मेरे पिताजी को लगे कि वो थे तो सब कुछ ठीक रहेगा करके, इसलिए। और वो बहुत ब्रेव आदमी थे। ये क्या है जो सब लोग मुझे कहते थे कि बहुत ख़राब था हाथ, सिंह में वो मॉर्फिन के इंजेक्शन देते थे, पर फिर भी वो लीड करते थे, क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ था कि उनका रेजिमेंट फोर्स से अंदर जा रहा था, तो उनको लगता था कि अगर जो मैं अभी स्टॉप कर दूं तो इतने फोर्स से हम अंदर नहीं जाएंगे।
लड़ाई के दौरान जब आगे से उनके पास SOS आया कि तुरंत कुछ टैंकों की दरकार है, तो वो खुद अपना टैंक लेकर आगे पहुंच गए।
उन्होंने ऑर्डर दिया कि पूना हॉर्स चविंडा के आसपास एक रिंग डालेगी और रात को इसको इन्फेंट्री आके अटैक करेगी। तो हमारी रेजिमेंट को वो रिंग डालने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए। उन ऑब्जेक्टिव्स को एक एक स्क्वाड्रन ने कैप्चर किया। एक ऑब्जेक्टिव था जसोरन, एक था वजीर वाली। उनको कैप्चर किए बाद हमने पूरी रिंग तो डाल दी थी, अटैक नहीं हो सका। जब रात को अटैक नहीं हुआ तो हमारे को ऑर्डर दिया कि और आगे जाओ, बुटो डोगरांदी जो कि दूसरी तरफ चविंडा को, उसको जाके कैप्चर करो। तो 14-15 तारीख को हमने ये जसोरन और वजीर वाली तो कैप्चर कर ली थी। फिर मेरी स्क्वाड्रन को टास्क मिला कि आप जाके बुटो डोगरांदी को कैप्चर करो। तो मैं स्क्वाड्रन, उस टाइम हमारी टैंक में भी कैजुअलिटी हो गई थी, तो मेरे पास तकरीबन 60 टैंक थी। उन 7 टैंकों को लेके और इन्फेंट्री थी हमारे पास गढ़वाल की, उनको लेके हमने भुट्टो डोगरांडी को अटैक किया और कैप्चर कर लिया। जैसे हमने कैप्चर किया, उनका काउंटर अटैक आया टैंकों से और इन्फेंट्री से, तो वहाँ काफ़ी लड़ाई हुई। उसमें हमारी कैजुअलिटीज़ हुई, उनकी भी कैजुअलिटीज़ हुई। तो मैंने CO साहब से रीइन्फोर्समेंट्स मांगे कि आप जल्दी से जल्दी कोई और टैंकें भेजो। तो उन्होंने जो सबसे नज़दीक स्क्वाड्रन थी, उसको जितनी भी टैंक वहाँ खड़ी थी, उनको अपने साथ लेके खुद आ गए और मेरे टैंक के बिल्कुल लेफ्ट पे आके और पोजीशन ले लिए, खुद भी फायरिंग शुरू कर दी।
उसी दौरान उन्हें पाकिस्तानी टैंक का एक गोला लगा। उनकी यूनिट के लोगों को लगा कि वो घायल भर हुए हैं।
उसी दौरान में उनके टैंक को शॉट लगा और वो इंजर हो गए। मैं तो ये सोचता था इंजर हुए, पर उनका शॉट इतना ज्यादा था कि ऑलरेडी उनकी कैजुअलिटी हो चुकी थी, मुझे नहीं पता लगा था। शाम के टाइम जब अंधेरा हुआ, जब मुझे पता लगा कि सीओ साहब की डेथ हुई, खुशाब टैंक पे बैठते हमारे, वो टैंक हिट हो चुकी थी तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो वहाँ से उनको दूसरी टैंक में बिठा के ले गए वहाँ से। तो रात के टाइम जब हमने पीछे आए तो वो टैंक को वहीं छोड़ना पड़ा क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसी टैंक को उठा के ले गए वो, जो कि उनकी वॉर मेमोरियल पे लगी हुई।
तारापोर हमेशा अपने टैंक के कपोला पर खड़े होकर युद्ध भूमि का मुआयना करते थे। आखिरी दिनों में उनका बायां हाथ भी स्लिंग में बंधा हुआ था।
जब मेरे को कोई ने बोला कि उन्होंने वायरलेस ने बोला लेट्स गो गेट देम जेंटलमैन, और फुल स्पीड से हमारी टैंक्स गए। ना मेरे नॉर्मली क्या करते उन लोग, कपोला बंद करते, पर मेरे पिताजी ने कपोला खुला रखा और ऊपर खड़े थे सो दैट ही कुड सी द बैटलफील्ड। उन्होंने ऐसे किया ना तो उनके जूनियर्स लाइक, मुझे हमेशा कोई कहता है हमारी तो इतनी मजाल नहीं थी कि हम हमारा कपोला बंद करें, तो हमको भी हमारा कपोला खुला रखे। तो जब हम लोग ऐसे गए, पाकिस्तान के ट्रूप्स जरा सरप्राइज हो गए कि ये सब लोग ऐसे सिर ऊपर करके आ रहे हैं, तो वो करेज उनके ट्रूप्स में भी गया।
हमारे क्या टैंक के अंदर कपोला होता है ना, उसके अंदर कर्ण तारापोर कभी कपोला अंदर घुसते ही नहीं थे। वो कहते जब तक कमांडर दिखाई नहीं दे तो कैसे पता लगेगा कमांडर, नहीं तो हर एक टैंक ही दिखाई देगी ना। हमेशा ऊपर ब्लैक पैरी पहन के चश्मे लगा के ऐसे खड़े रहते थे वो, सबको दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनका कोड वर्ड यही था, अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे, जीतेंगे तो साथ जीतेंगे। उन्हें डर तो लगता ही नहीं था ना।
लड़ाई के दौरान उनकी कमांड का लोहा उनका सामना कर रहे पाकिस्तानियों ने भी माना था। 1965 में पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन गुल हसन खान ने अपनी आत्मकथा में लिखा है,
25 कैवलरी के कमांडर कर्नल निसार खान ने मुझे बताया था कि तारापोर के वायरलेस इंटरसेप्ट को सुनना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख होती थी। उनका अपने लोगों को कमांड देना सुनते ही बनता था।
कर्नल तारापोर पूना हॉर्स में संयोगवश ही आए थे। पहले वो हैदराबाद स्टेट की सेना में हुआ करते थे। एक बार भारतीय स्टेट फोर्सेस के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल एल एदरोस उनकी बटालियन का निरीक्षण कर रहे थे।
ये स्टोरीज हैदराबाद लांसर्स की है, इंडिपेंडेंस के पहले, जस्ट बिफोर द हैदराबाद लांसर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में असमारा गए थे। तो उसके पहले वो जो नए सिपाही आए थे ना, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। तो मेरे पिताजी हैदराबाद लांसर्स में थे पर इन्फेंट्री में थे। तो क्या हो गया कि तभी जब उन लोग ट्रेनिंग पर थे तो एक सिपाही था जो जनरल एल्दरूस, वो जनरल ऑफ द हैदराबाद नामी थे, वो थे। तो ये सिपाही जरा नर्वस हो गया, तो उसने जो ग्रेनेड लॉब किया तो रॉन्ग जगह में लॉब किया और जनरल एल्दरूस की तरफ लॉब किया। तो मेरे पिताजी ही वाज एन ऑफिसर, पर उन्होंने बाउंड्री के ऊपर से जंप मारी और ग्रेनेड को पकड़ के वापिस दूसरी दिशा में फेंकी, उतने में ग्रेनेड स्प्लिंट हो गया, बर्स्ट हो गया और मेरे पिताजी के पूरे स्प्लिंटर्स उनके चेस्ट पर लग गए। जब वो अच्छे हो गए तब जनरल एल्दरूस ने उनको बुलाया और कहा कि आपने मेरी जिंदगी बचाई, मैं आपके लिए क्या कर सकता है। मेरे पिताजी राइडिंग के बहुत शौकीन थे, तो उनकी हमेशा इच्छा थी कि वो इन्फेंट्री छोड़ के कैवलरी में जाए। तो उन्होंने जनरल एल्दरूस को बोला कि आप एक चीज़ मेरे वास्ते कर सकते हैं, मेरा ट्रांसफ़र आप कैवलरी में कर सकते हैं। तो जनरल एल्दरूस वॉज कर्नल कमांडेंट ऑफ द फर्स्ट हैदराबाद लांसर्स। तो दूसरे दिन मेरे पिताजी की ट्रांसफर हैदराबाद लांसर्स में हो गई।
कर्नल तारापोर की बहादुरी का जिक्र करते हुए जनरल अजय सिंह कहते हैं कि उनको आगे आकर पाकिस्तानी टैंकों पर फायर करने की कोई जरूरत नहीं थी।
उनको बुटो डुगरानी पे आने की क्या जरूरत थी, किसी और स्क्वाड्रन को नहीं भेज सकते थे। मैं आपको बताऊं, जब फर्स्ट बड़ी टैंक बैटल हो रही थी तो एक ऑफिसर, मेरा साथ वाला ऑफिसर था जो वहाँ साथ खड़ा हुआ था, उसने उनको कहा कि सर आप अपनी पोजीशन चेंज करके थोड़ी कवर में चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, जहाँ तुम हो मैं हूँ, अगर तुम्हारे गोला लगेगा तो मेरे भी लगेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस किस्म के आदमी थे वो, तो जब बच्चे थे उनकी तकदीर में लिखा हुआ था, उनके दिमाग में ये इच्छा थी कि मैं आर्मर कोर में जाऊं, फौज में जाऊं, कुछ करके दिखाऊं।
जरीन बताती हैं कि उनके पिता के हीरो नेपोलियन थे, उनके पास नेपोलियन पर बहुत सी किताबें थी।
पिताजी हमेशा कहते थे नेपोलियन वाज अ मिसअंडरस्टूड मैन, ही वाज एन एक्सेलेंट जनरल, और ये कोड नेपोलियन भी उन्होंने जो फ्रांस के वास्ते किया है, विच शोज दैट ही वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन। तो मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि इतना छोटा सा आदमी था पर इतने बड़े काम उसने किए हैं, और जिस तरह से उनके कैंपेन्स उन्होंने प्लान किए थे वो तारीफ काबिल है। मेरे पिताजी चाइकोस्की को बहुत पसंद करते थे, वो जो कैनन्स बूम होते हैं, दैट वाज फेवरेट।
लेफ्टिनेंट जनरल चीमा की पत्नी उषा चीमा ने एक जगह लिखा है,
65 की लड़ाई पर जाने से पहले मैं अपने पति को पूना रेलवे स्टेशन छोड़ने आई थी। ट्रेन छूटने ही वाली थी कि तारापोर मेरे पास आए। बोले, उषा तुम चिंता मत करो, मैं निरंजन का पूरा ख्याल रखूंगा। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। मेरे पति तो सुरक्षित लड़ाई से वापस लौटे, लेकिन तारापोर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए।
कर्नल तारापोर की बेटी जरीन बॉयस को अभी तक याद है कि 1966 के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए वो और उनकी माँ दिल्ली गए थे।
अवार्ड विनर्स को, माता जी को कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के पास बैठा गया ऊपर, और हम बच्चे लोग आगे किए इंक्लोजर में थे। मेरी माता जी वॉज ओनली 41 ईयर्स ओल्ड, राधाकृष्णन था। तो जब साइटेशन पढ़ा गया, वेरी वेरी टचिंग एंड वेरी वेरी हार्ड। नाम बुलाते हैं तो जो आपका एस्कॉर्ट है उसके साथ ऊपर डायस पर जाना पड़ता है, फिर वहाँ करीब 2 मिनट के वास्ते, 2 ही मिनट पर खड़े होने पड़ते हैं जब तक साइटेशन पढ़ा जाता है। और मेरी माता जी हमेशा बोलते थे कि दोज वर द हार्डेस्ट 2 मिनट्स ऑफ माई लाइफ। आँख में आंसू आ जाते। और जब राधा कृष्णन मेरी माता जी को ये दिया, उसने देखा कि शी इज सो यंग, तो उनके हाथ पर ही रो रहे, ये क्या, बट इट्स अ वेरी टचिंग मोमेंट।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
कर्नल तारापोर की कहानी, और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर 2013 में शुरू की गई हॉकी इंडिया लीग के चौथे सत्र के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी दिल्ली में की गई। क्रिकेट की तरह करोड़ों तो नहीं, लेकिन लाखों में आज कई खिलाड़ियों की बोली बढ़ चढ़ कर लगी। सबसे ज्यादा कीमत में बिकने वाले भारतीय खिलाड़ियों में फॉरवर्ड आकाशदीप रहे, जिन्हें तकरीबन 55 लाख रुपए में यूपी विजार्ड ने खरीदा। एक और फॉरवर्ड मनदीप सिंह को अभिनेता जॉन अब्राहम की मालिकाना हक वाली दिल्ली वेव राइडर्स ने 46 लाख रुपए में हासिल किया। पूर्व ओलंपियन हरबिंदर सिंह बता रहे हैं कि इस बार नीलामी में स्ट्राइकर्स के दाम इतने ऊंचे क्यों रहे।
फॉरवर्ड्स की जो बेस प्राइस है, इतनी जो प्राइस उसको मिली है, उसका मेन रीजन है कि इस दफा जो फ्रेंचाइज ये जो एडिशन है, इसमें थोड़े से रूल में चेंजेस हुई हैं। जो फील्ड गोल है, अगर आप एक गोल करेंगे तो आपको 2 गोल मिलेंगे, तो जो ये जो ऐसी चेंजेस की हैं, या अगर पेनल्टी स्ट्रोक आप पेनल्टी कार्नर को बचाने के लिए पेनल्टी स्ट्रोक करते हैं, इंटेंशनली फाउल करते हैं, तो उससे गोल होता है पेनल्टी स्ट्रोक से, तब भी 2 गोल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको पेनल्टी कार्नर से पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है तो उसमें आपको 1 गोल मिलेगा। तो हर एक टीम कोशिश करेगी कि जो फील्ड गोल किए जाए।
ऊंचे दाम पाने वालों में ड्रैग फ्लिकर संदीप सिंह भी रहे। हॉकी इंडिया लीग में अब तक सबसे ज्यादा 22 गोल दागने वाले संदीप को तकरीबन 53 लाख रुपए में रांची रेस ने खरीदा। हालांकि भारतीय टीम के कप्तान सरदार सिंह की नीलामी उम्मीद से फीकी रही। दिल्ली फ्रेंचाइजी से रिलीज किए गए सरदार को पंजाब वॉरियर्स ने 38 लाख में खरीदा। हरबिंदर सिंह बता रहे हैं कि उनके जुड़ने से पंजाब टीम को कितना लाभ होगा।
बिल्कुल, सरदार सिंह बड़े इस वक्त दुनिया के माने हुए मिडफील्डर्स में से हैं, और उनका नाम भी है, इंडिया के कैप्टन भी हैं। तो उनका जिस टीम में, जिस जैसे वॉरियर्स में गए हैं, जेपी वॉरियर्स में गए हैं, तो उनका उनको एडवांटेज जरूर होगा, और बाकी जो उनकी पंजाब की जो सपोर्ट है वो भी उनको जरूर जाएगी। लेकिन इस जो अभी सबसे इसमें अच्छा होगा कि हर एक जो टीम में नए चेहरे होंगे, जो कि पहले किसी फ्रेंचाइज से खेल रहे थे, अब किसी से खेलेंगे, तो उसका थोड़ा सा और भी प्रभाव बढ़ेगा, और जो कंपटीशन है वो टूर्नामेंट का वो काफी टफ हो जाएगा।
20 देशों के 272 खिलाड़ी इस नीलामी प्रक्रिया से गुजरे, जिनमें से 135 भारतीय रहे। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही,
और अब कार्यक्रम में से पहले कि आपसे विदा लें, सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से।
बीबीसी बीबीसी समाचार। केंद्रीय चिली में एक जबरदस्त भूकंप आने के बाद करीब 10 लाख लोगों को वहां से हटा दिया गया है। इसमें कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में अधिकारियों का कहना है कि निचले स्तर की 368 सरकारी नौकरियों के लिए 20 लाख से भी ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको ने देश की सुरक्षा परिषद से कहा है कि वह प्रतिबंधित लोगों की सूची में से बीबीसी के 3 पत्रकारों का नाम हटा दें। पश्चिम अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट हुआ है। ब्रिटेन की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी MI5 के प्रमुख एंड्रू पार्कर ने चेतावनी दी है कि बदलती तकनीक के साथ साथ चरमपंथी गतिविधियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों का कहना है कि उन्होंने इराक की राजधानी बगदाद में 2 आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया है। IS के मुताबिक इन हमलों में 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इन हमलों में 2 व्यस्त और भीड़ भरे शिया इलाकों में पुलिस चौकियों को निशाना बनाया गया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा के इस अंक में इतना ही। बस 1.5 घंटे बाद आपसे मुलाकात होने वाली घटनाचक्र में स्टूडियो संभाल रहे थे रवि कुमार और राजेश चौहान। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।